गीत राग विज्ञान नमो ताहि जाति भई अर्हन्तादि मह जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितो उपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयानी सतत केवल ज्ञान पाने पूजों के सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की, हम सभी लोग पिछले कई दिनों से लगातार अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए भक्ति का स्वरूप और भक्ति की महिमा समझ रहे हैं और हमने पिछले दिनों ये बात बहुत अच्छे से समझ ली है कि यदि हमने जैसा भक्ति का स्वरूप कहा गया है और जैसी महिमा भक्ति की है उसे ठीक अगर समझ लिया है तो भक्ति भी हमारे जीवन को ऊंचा उठा सकती है। उच्चैर गोत्रम प्रणते भोगो दानात उपासनात पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तवनात कीर्ति स्तपो निधिषु। जितना हम भगवान के चरणों में झुकते हैं उतने हम ऊंचे हो जाते हैं। आचार्य समंतभद्र स्वामी ऐसा कह रहे हैं, बड़ी कंट्राडिक्टरी बात, बड़ी विरोधाभास वाली बात है कि कोई झुके तो झुकने से तो वो नीचा हो जाएगा, लेकिन कह रहे हैं उच्चैर गोत्रम प्रणतेर, जो जितना भगवान के और पंच परमेश्वर के चरणों में झुकता है वो उतना ऊंचा उठ जाता है। भोगो दानात, जितना अधिक वो दान देता है, जितना लोभ का भगवान के सामने विसर्जन करता है उतना उसके लिए संसार की भौतिक उपलब्धियां मिलती हैं। बताइए, हम तो सोच रहे थे कि देते देते तो हम कंगाल हो जाएंगे, भगवान के सामने जिंदगी भर चढ़ाते ही रहें, लेकिन वो कह रहे हैं कि पंच परमेश्वर जी के चरणों में जितना हम समर्पित करते हैं द्रव्य उतना अधिक हमें संसार के भौतिक सुख मिलते हैं। उपासनात पूजा, जब भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं तो हमारी स्वयं की पूजा होने लगती, हम स्वयं ही पूज्य हो जाते हैं। अरे कोई कभी पूजा करते करते पूज्य हुआ है क्या? लेकिन लिख तो ऐसा रहे हैं कि जितनी भगवान की पूजा करते हैं उतने हम भगवान के जैसे पूज्य हो जाते हैं। भक्ति सुंदर रूपम, और जितनी हमारी पंच परमेश्वर जी के प्रति भक्ति होती है उतना हमारा स्वरूप सुंदर होता चला जाता है, उतना हमारा शरीर सुंदर होता है। शरीर की सुंदरता तो भक्ति में ही है। भक्ते सुंदर रूपम स्तवनात कीर्ति स्तपो निधिसु, जब भगवान की स्तुति करते हैं तब हमारे लिए संसार में यश प्राप्त होने लगता है। देखो तो दूसरे की प्रशंसा करने से हमें प्रशंसनीय पद की प्राप्ति हो सकती है क्या? हमें तो लगता दूसरे की प्रशंसा करने से अपना क्या होने वाला, दूसरे की बढ़वारी होगी, अपना तो कुछ भी नहीं होगा। काय को करो दूसरे की प्रशंसा, अपनी प्रशंसा करो। ऐसा एकदम सहसा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमारे अंदर जब तक हमारी अपनी दृष्टि में भगवान का स्वरूप नहीं आया है, तब तक क्या लिखा आचार्यों ने, आकुलित भयो अज्ञान धार, ज्यो मृग मृग तृष्णा जानि वारि। जैसे कि एक हिरण ग्रीष्म काल में रेत के रेगिस्तान में पानी की खोज में भागता है और दूर उसे चमकीली रेत में पानी जैसा एहसास होता है, वो कहलाती मृग तृष्णा, और वो निरंतर उसकी तरफ भागता है और वो उससे दूर होती चली जाती है। और इसी दौड़ धूप में और उसके प्यास की वजह से प्राण निकल जाते हैं। ऐसे ही तुमको बिन जाने जो कलेश पाए सो तुम जानत जिनेश। मैंने भी भगवान आज आपके चरणों में आकर के ये बात समझी है कि मैंने अगर संसार में दुख पाया है, मैंने अगर संसार में आकुल विकल होकर भौतिक सुखों को पाने की चेष्टा में अपना जीवन व्यर्थ गंवाया है, तो उसका एक ही कारण है, तुमको बिन जाने। मैंने आपके स्वरूप को नहीं पहचान पाया, इसलिए मैं अपने भी स्वरूप को नहीं जान पाया, और ऐसी अज्ञानतावश आकुलित होकर के मैंने और दुखों का ही उपाय किया है। मुझे झुकने में अपनी हानि मालूम पड़ती है, मुझे आपके चरणों में अपना लोभ विसर्जन करने में अपनी हानि मालूम पड़ती है, मुझे बड़े लोगों की प्रशंसा करने में अपनी इंसल्ट मालूम पड़ती है, मुझे भगवान की भक्ति और स्तुति करने से क्या मिलने वाला है। ऐसा मुझे जितनी जितनी अच्छी चीजें हैं उनमें मुझे हानि मालूम पड़ती, और जिनमें सचमुच मेरी हानि है उनमें मुझे आज तक लाभ मालूम पड़ता रहा। यही मेरी अपनी अज्ञानता मेरे दुखों का कारण बन गई है। ये भगवान की भक्ति करते समय अपने आप हृदय में बात स्पष्ट होती है, ऐसे ना समझ में आएगी। जैसे जैसे हमारे अंदर भक्ति और स्तुति करने का विचार दृढ़ होता चला जाता भगवान के प्रति, उनका स्वरूप जैसे जैसे हमारे हृदय में आता चला जाता, वैसे वैसे ये सारी चीजें एकदम स्पष्ट समझ में आने लगती। अभी तो हानि में लाभ मालूम पड़ता है, अभी तो संसार में निरंतर हम अपने हाथ से क्षति कर रहे हैं, पर वो हमें लाभ जैसी मालूम पड़ती है, क्षति तो मालूम ही नहीं पड़ती। उदाहरण है इसका प्रसिद्ध उदाहरण, एक चोर ने चोरी करी, और क्या चुराया उसने, घोड़ा चुरा लिया। अब न घोड़े की उसको पहचान, न घोड़े के बारे में कोई जानकारी, कितने का बिकेगा कैसा बिकेगा, घोड़ा उन दिनों ज्यादा महंगा नहीं बिकता था, 200-500 रुपए का बिकता था। इसने सोचा कि अगर सस्ता बेचूंगा, अब दिमाग की बात है, सस्ता बेचूंगा तो लोग समझेंगे चुरा के लाया होगा, इसलिए सस्ते में बेच रहा है। तो इसने सोचा कि नहीं, महंगा बेचूंगा। तो खड़े हो गया वो उधर बाजार में जाकर के, लोग पूछते भाई घोड़ा बेचना है, कहते हाँ बेचना है, कितने का बेचोगे, कहते 900 रुपए का। अरे 400-500 रुपए का बढ़िया घोड़ा मिल जाता, इसकी ऐसी क्या विशेषता है, बोले है विशेषता है, इसलिए तो आप देख लो। लोग देखते परखते, कोई विशेषता नहीं समझ में आती, तो कहते भाई बहुत महंगा है। सुबह से शाम हो गई, अब नहीं बिका वो। एक उसी बाजार में दूसरा चोर था, वो जरा एक्सपर्ट वाला था। अपन में भी अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, कुछ एक्सपर्ट रहते हैं संसार में, उनको कोई ऐसे सहसा नहीं पकड़ सकता, वो सब समझते हैं कि कहां पकड़ा जा सकता है, कहां बचा जा सकता है। तो उसने देखा कि ये मामला कुछ गड़बड़ है। वो पहुंचा उसके पास कि भाई कितने रुपए का बेच रहे हो, बेचना भी है कि नहीं, क्या सुबह से खड़े हुए हो? अरे बोले बेचना है भाई, बेचना है मुझे। कितने का है? कितने? 900 रुपए का है। तो उसने कहा कि लग तो 900 रुपए जैसे ही लग रहा है तो बहुत कीमती लग रहा है। तो ये बड़ा खुश हुआ कि लगता है कि ये ले लेगा। तो उसने कहा कि सुनो, लेना तो मुझे है और ज्यादा महंगा नहीं है, क्योंकि वो जो 400-500 रुपए वाले घोड़े मिलते हैं उससे तो ये बहुत स्पेशल किस्म का घोड़ा है, पता नहीं तुम्हें कहां से कैसे हाथ लग गया, इतना बेशकीमती, और मैं ले लेता हूं इसको। पर जरा लेने से पहले तुम अगर थोड़ी परमिशन दो तो जरा इसकी चाल देख लूं, इस पे बैठ करके देख लूं। उसने कहा अरे वाह, इसमें क्या बात है, आपको जब लेनी है तो आप चाल देखो। तो उसके हाथ में थी एक छड़ी। उसने कहा सुनो, ये छड़ी पकड़ो तुम और मैं चाल देख के आता हूं। और गया वो चाल देखने, तो उसने देख ली उसकी चाल, वो अच्छी थी तो ले गया वो, क्या उसमें 900 रुपए चुकाने की भी क्या बात, चाल अच्छी है ले गया। अब लोग आए उसके पास, जब इसका घोड़ा चला गया तो लोग आए, भाई कितने का बेचा, क्या हुआ, बिक गया कि नहीं बिका? कहले बिक गया। कितने का बेचा? कहते जितने का था उतने ही का। क्या? जितने का था उतने ही का बिक गया। बोले फिर मुनाफा? मुनाफा छड़ी। हानि में भी लाभ दिखाई पड़ रहा है संसार में, कहना ये चाह रहा हूं। आती तो हंसी है सुन करके, पढ़ करके भी मुझे जब पढ़ा था तो बहुत हंसी आई कि ये है। हम सब समझते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं समझते, हम कहां कहां धोखा खा रहे हैं संसार में। जिन जिन चीजों में हमने आज तक सुख माना है उनसे हमें दुख मिला है, इसके बाद भी सुख जान पड़ता। और जिस चीज में मेरा लाभ है, जिस चीज में मेरे जीवन में शांति और सुख मिलने वाला है, उस चीज के संपर्क में ज्यादा समय तक रहने का मन नहीं होता। पूजा भक्ति स्तुति और अच्छाइयां हमारे जीवन में हमेशा हमारा इंतजार करती हैं, लेकिन हम उनसे हमेशा दूर रहते हैं। और जिस चीज में हमें संसार में हमारा पतन हो रहा है, उसी चीज को हम ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में प्रायोरिटी देते हैं। भगवान की भक्ति जैसे जैसे हम करते जाएंगे, वैसे वैसे ये वास्तविकता हमें मालूम पड़ेगी कि संसार में जहां मुझे लाभ मालूम पड़ रहा है वहां लाभ नहीं है। मैंने चारों गतियों में सिवाय अपनी अज्ञानता के दुख के अलावा कुछ भी नहीं पाया, आज आपके चरणों में आया हूं। ये चीज अगर हमारे मन में, जैसे कोई बहुत तपती दोपहरी में और बहुत परेशान होकर के किसी छाया के स्थान पर आ जाए, वहां शीतल जल पीने मिल जाए, आचार्यों ने ठीक ऐसी ही उपमा भगवान के चरणों में बैठ के भक्ति करने की दी है कि संसार में जैसे कोई बहुत ग्रीष्म की तपन से तकलीफ में हो और उसे छायादार वृक्ष मिल जाए और वहीं पर शीतल जल मिल जाए, ठीक ऐसे ही संसार की तपन से जब कोई घबरा करके और भगवान के चरणों में छाया और शीतलता दोनों पाने के लिए आता है, तब जाकर के और हमारे अंदर ऐसा भाव आना चाहिए कि मैं यहां छाया और शीतलता में बैठा हूं, भगवान की भक्ति करने आया हूं, तो मुझे उनके चरणों में आते ही छाया भी मिल गई, शीतलता भी मिल गई, मेरी संसार की भटकन अब जरूर मिट जाएगी। भगवान की प्रशंसा इसी बात में है। भगवान की प्रशंसा इस बात में नहीं है कि उनके पास कितने लोग पूजा करने आते हैं और कितने बड़े बड़े लोग उनकी पूजा करते हैं, इसमें भगवान की विशेषता नहीं है। भगवान की विशेषता तो यह है कि जो उनके चरणों में पूजा करता है वो उनके माध्यम से अपना कल्याण कर लेता है, यही भगवान की अपनी विशेषता है। वादिराज महाराज कह रहे हैं, भगवान की भक्ति करते हुए इंद्रः सेवाम तौ सुकुरुताम किम तया श्लाघनम ते तस्य वेयम भवलय करीम श्लाघता मातनोति त्वम निस्तारी जन्न जलधे सिद्धिकांता पतिस्त्वम त्वम लोकानाम प्रभु इति श्लाघते स्तोत्रम इत्थम। आपकी सचमुच स्तुति तो वही कहलाएगी। इसमें आपकी कोई स्तुति और प्रशंसा नहीं है कि इंद्र सेवा में खड़े हैं आपकी, इसलिए आप बड़े हो गए। क्योंकि आप सौ सौ इंद्रों के द्वारा पूज्य हैं इसलिए आप बड़े हैं। नहीं भगवान, मेरी दृष्टि में तो आप सौ सौ इंद्रों से पूज्य होने पर भी बड़े नहीं हैं। इंद्र आपकी पूजा करके आपका दर्जा नहीं बढ़ा रहा है, इंद्र तो आपकी सेवा करके आपकी पूजा करके भवलय करीम अपने संसार से मुक्त होने का उपाय कर रहा है। ये तो इंद्र ही की प्रशंसा हो गई, आपकी क्या प्रशंसा। देखना आप क्या कह रहे हैं, हम भगवान की भक्ति पूजा करते हैं इससे भगवान को कुछ नहीं मिलने वाला, इससे भगवान का कैडर नहीं बढ़ने वाला। हम भगवान की पूजा करते हैं ये हमारी प्रशंसा है। देखो उधर हम भगवान के गुणों को की पूजा कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, और वादिराज महाराज कह रहे हैं कि इसमें भगवान की प्रशंसा नहीं, इसमें तो जो पूजा कर रहा उसी की प्रशंसा है। आपकी प्रशंसा भगवान किस बात में है कि आप तीनों लोकों के स्वामी बने को प्राप्त हो गए, क्योंकि आपने अपने आप को जीत लिया है, इसलिए आप अपने स्वामी हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी हैं। और इतना ही नहीं, जन्न जलधे इस संसार रूपी सागर से पार करने वाले आप हैं और मुक्ति को प्राप्त करने वाले आप हैं। ये तीन विशेषताएं आपकी हैं जो आपकी भक्ति के लिए मुझे प्रेरित करती हैं। क्या क्या चीज हो गई, भक्ति से मुझे क्या प्राप्त करना है। भक्ति से मेरा अपना जीवन ऊंचा उठे, भगवान को मेरी भक्ति से कुछ लेना देना नहीं है। भगवान की भक्ति मैं करूं तब भी भगवान भगवान ही है, और भगवान की भक्ति मैं ना करूं तब भी भगवान का कुछ हर्जा नहीं होने वाला। मेरा बनता बिगड़ता है भगवान की भक्ति करने और नहीं करने से। भगवान का कुछ, भगवान पर कोई हम उपकार नहीं कर रहे हैं भगवान की पूजा पाठ करके, कहना ये चाह रहे हैं। जबकि लगता तो यही है कि हमने पूजा करें तो को पूछे लो ने भगवान को है? नहीं, ऐसा नहीं है। जिसकी हम प्रशंसा करते हैं, जिसके हम गुणगान करते हैं, इससे उसका कोई उपकार नहीं होता। जो हम दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं, पंच परमेश्वरी का गुणगान कर रहे हैं, उससे हमारा ही जीवन ऊंचा उठता है। भक्ति हमें ये सिखाती है। और भगवान की प्रशंसा किस बात में है, उपलब्धि क्या है भक्ति की, भक्ति की उपलब्धि है कि धीरे धीरे मेरा संसार घटता चला जाए और मैं संसार से पार हो जाऊं, ये मेरी भक्ति की उपलब्धि है। तो देखिएगा भक्ति का स्वरूप क्या है। भक्ति का स्वरूप कि मेरा अपना उद्धार हो, यही भक्ति का स्वरूप है। और भक्ति की उपलब्धि भी यही है कि मेरा अपना उद्धार हो। बताइएगा, भक्ति इसके अलावा और कुछ भी नहीं सिखाती। सिर्फ उसका स्वरूप भी वही है और उसकी उपलब्धि भी वही है। जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसा भी हो सकता है कि वही उसका स्वरूप और वही उसकी उपलब्धि। अपन तो सोचते हैं कोई और चीज होगी और उपलब्धि कुछ और होगी। नहीं, भक्ति का स्वरूप ही यह है कि जो हमें संसार से पार लगा दे और भक्ति की उपलब्धि भी यही है कि मैं संसार से पार लग जाऊं। दोनों ही चीजें, शुरुआत भी वहीं से करें और अंत भी वहीं पर हो। भगवान के जब चरणों में बैठ के भक्ति शुरू करें तो ध्यान रखें कि मुझे अपने उद्धार के लिए भक्ति करनी है, और जिस क्षण मेरा उद्धार हो जाएगा समझना उस क्षण मेरी भक्ति पूरी हो गई। भक्ति की शुरुआत भी मेरे कल्याण से होती है और भक्ति का अंत भी मेरा जब पूर्णतः कल्याण हो जाता वहां जाकर के होता। भक्ति तो इस तरह शुरू से आखिरी तक मेरे जीवन का कल्याण करने वाली है। लेकिन जिनकी भक्ति की जा रही है वो हमारी भक्ति को सुन तो है ही नहीं रहे, क्या पता सुन रहे कि नहीं, ऐसा भाव आ सकता मन में। उतने ऊपर वहां बैठे हैं भगवान, अरे जिससे अपन भक्ति करो, जिसकी पूजा अर्चना करो, वो हमारी बात सुने तो उस पर ध्यान देवे और ध्यान देकर के हमारा कुछ कल्याण करे। अब ऐसा मन में आ सकता भाव? ऐसा भाव आ गया बादीराज महाराज के मन में कि वृत्तिर्वाचा मपर सदृशी नत्व मन तुल्या स्तुत्युदगारा कथमिव ततः स्वयं अमीना क्रमंते मैवम भूवंस तदपि भगवन भक्ति पीयूष पुष्टास्ते भव्यानाम अभिमत फला पारी जाता अवंती। अपने आप प्रश्न भी कर लिया, अपने आप उत्तर भी दे दिया। वृत्तिर्वाचाम अपर सदृशी नत्व मन तुल्या, भगवान मेरी भक्ति में आपके गुण समाई नहीं सकते, आपके अनंत गुण हैं, मेरे वचनों से आपकी स्तुति हो ही नहीं सकती। पहली बात, क्योंकि आप दूसरों जैसे नहीं हैं, अतुल्य, आपकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। एक अर्थ तो ये हो गया, दूसरा कह रहे हैं कि मेरे वचन तो जड़ रूप हैं, आप चेतन स्वरूप हैं, आप तक मेरे ये जड़ वचन कहां से पहुंच पाएंगे, मेरी अप्रोच से बाहर हैं आप, ना मैं आपकी इन शब्दों के द्वारा स्तुति कर सकता हूं, ना मेरी स्तुति आप तक पहुंच सकती है। दोनों ही चीजें, पहुंच के दो अर्थ हो गए, पहुंचना भी और अप्रोच भी। किस तरह से भक्ति करी होगी वादीराज महाराज, और वाकई उनको उसी जीवन में उस चीज का लाभ भी मिला, असाता कर्म नष्ट हुए। और उद्देश्य वही है कि मेरे असाता का क्षय हो, मेरे कर्मों का क्षय हो, जिससे कि मैं इस संसार से पार हो जाऊं, इस संसार के दुखों से पार। तब फिर उत्तर क्या है, ना भगवान तक हमारे वचन पहुंचने वाले, और जब तक हमारी प्रार्थना उन तक नहीं पहुंचेगी हमारी सुनवाई कैसे होगी, और जब सुनवाई नहीं होगी तो हमारा काम कैसे बनेगा, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन समाधान देते हैं कि भगवान मेरे ये भक्ति से भरे उद्गार, मेरी ये श्रद्धा, मेरे हृदय के वचन आप तक पहुंचे ना पहुंचे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मेरी बात सुने या सुने नहीं सुने इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भक्ति इतनी पराधीन नहीं है। ये तो संसार में किसी से कुछ चाहिए हो तो उसकी आरजू मिन्नत करनी पड़ती, उससे प्रार्थना करनी पड़ती, सौठों चक्कर लगाना पड़ती, उसके तब काम बनता है। बस यही तो संसार में और आपके चरणों में आकर के भक्ति करने में फर्क है। वहां जिस चाहे की सेवा करते हैं संसार में कुछ नहीं मिलता, आपकी सेवा इतनी स्वाधीन है कि आप हमारे वचन सुनो चाहे नहीं सुनो, लेकिन हमारे ये भक्ति के उद्गार हमारे लिए पारिजात वृक्ष के समान है, कल्प वृक्ष के समान है। वे हमें अभिमत फलाह, हम जैसा फल चाहेंगे वैसा देने वाले हैं। भक्ति हमारी फलित होगी भगवान चाहे सुने या ना सुने, क्योंकि भक्ति करने वाले ने भगवान की भक्ति करके अपने जो परिणामों को निर्मल किया है वे परिणामों की निर्मलता उसे फल देंगे। भगवान चाहे सुने चाहे ना सुने, और अगर सुन भी लें भगवान तब भी भगवान अपने आत्मा में लीन है, सबकी सुन रहे हैं, सबकी जान रहे हैं, सबको देख रहे हैं, लेकिन किसी के मामले में जरा भी इंटरफियर नहीं करते हैं। यही उनकी भगवत्ता है, और हम उनके माध्यम से उनकी स्तुति करके और अपना कल्याण कर सकते हैं। पर इतना विश्वास होना चाहिए, मन कच्चा नहीं पड़ना चाहिए कि मेरे वचन क्या पता मेरी भक्ति से क्या पता मुझे लाभ मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, ऐसा मन में भाव नहीं आना चाहिए। भक्ति की महिमा हमारे भीतर एकदम स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि भक्ति बहुत स्वाधीन है, वो किसी पर निर्भर नहीं है। वो तो जैसे ही मैं करूंगा मुझे उसका फल तुरंत मिलना शुरू होगा, मुझे अपने आप ही मेरे कर्मों की निर्जरा से सारी सुख सुविधाएं और यहां तक कि संसार से पार होने का रास्ता भी मिल जाएगा। एक छोटी सी घटना आपको सुनाऊं ताकि भक्ति की महिमा मन में लगे कि हां सचमुच इसी भाव से मुझे भक्ति करनी चाहिए, इतने ही पूरे कॉन्फिडेंस से, इतने ही पूरे आत्मविश्वास से मुझे भक्ति करनी चाहिए। जैसे बादीराज महाराज ने अत्यंत श्रद्धा और अत्यंत विश्वास से भक्ति करी, वे कहीं भी किसी संदेह में नहीं पड़े, न किसी आश्वासन में पड़े कि मिल जाएगा, नहीं, सो डेफिनेट वो तो मिलेगा ही, मेरे अपने परिणाम आपकी भक्ति से निर्मल हों और मेरा काम ना बने, उनका ना बने, जो भक्ति करते हैं परिणाम भी गंदे के ये रहते हैं, उनका ना बनेगा, उनकी मदद तो भगवान भी ना करेगा, लेकिन मैंने तो आपके माध्यम से अपने परिणाम निर्मल किए हैं, मेरा काम तो जो है आसानी से बन जाए। सेठ जी 20 वर्ष हो गए जिनालय बनवा करके उसमें पूजा करते हैं, बड़े सेठ हैं, नामी सेठ हैं, 4 चोर उनके घर आ गए। सेठ जी थोड़े मुश्किल में पड़े, कहा कि भाई क्या चाहते हो? बोले कुछ नहीं, आपके प्राण। अरे भाई धन पैसा ले लो। नहीं, धन पैसा नहीं चाहिए, धन पैसा तो बहुत जगह से मिल जाएगा, हमें तो आपके प्राण ही चाहिए। अब सेठ जी जरा मुश्किल में, सेठ जी वर्षों से पूजा कर रहे थे, मन में बात आ गई कि क्या हुआ इतनी पूजा पाठ करने से, धन पैसे में राजी नहीं हो रहे, मेरे प्राण ही लेंगे। तो चोरों से मालूम क्या कहा कि सुनो, प्राण मेरे ले लेना, पर मेरे बाद मेरे चैत्यालय में भगवान की पूजा कौन करेगा, इसलिए इससे पहले कि तुम मेरे प्राण लो, मेरी थोड़ी मदद करो, मैं मूर्ति को गहरे जल में विसर्जित कर दूं, फिर मेरे प्राण ले लेना। ऐसा मन में आ गया कि जिंदगी भर हो गई, अच्छा और फिर इतना ही नहीं, लोग क्या कहेंगे, इतने धर्मात्मा थे और ऐसे मारे गए, ऐसे प्राण निकले उनके, इससे अच्छा है कि चलो भगवान को भी विसर्जित करो, जिंदगी तो हो गई, पूछते क्या किया भगवान ने, ऐसा भाव आ जाता कई बार मन में। अच्छे अच्छे भक्ति पूजा पाठ करने वालों के जीवन में भी। अब चले सेठ जी, चारों चोर उनके पीछे बंदूक लिए जा रहे हैं, रास्ते में बड़े आकुल विकल हैं और बार बार यही विचार आ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, मैंने इतनी भक्ति पूजा करी और आज ऐसे मेरा प्राणांत होगा और श्री जी को भी मुझे जल में विसर्जित करना पड़ रहा है। और इतने में देखते क्या है कि जंगल के रास्ते में ध्यान में लीन मुनि महाराज बैठे हैं, फौरन उनके चरणों में जाकर के प्रणाम करते हैं। महाराज आंख खोल करके बिना कुछ पूछे और कहते हैं, सेठ घबराओ मत, विचलित मत हो, भगवान की पूजा अर्चना से तुम्हारे बहुत से पाप कर्म नष्ट हो गए हैं, तुम्हें अपना पूर्व जीवन नहीं मालूम, तुमने इन चारों को अलग अलग प्राण लिए थे, ये चारों आज मिलकर के सिर्फ एक ही बार तुम्हारे प्राण ले रहे हैं, चार भाव में लेते ही भगवान की भक्ति से तुम्हारे वो चारों भाव कट गए, इसी भाव में तुम्हें इतना फल मिलके और रह जा रहा है। अब सेठ जी चौंक गए और वे चारों भी ऐसी बात सुनकर के दंग रह गए कि सेठ जी ने हम चारों को मारा था, उसका परिणाम सेठ जी भोग रहे हैं। अपन फिर से इनके साथ ऐसा करेंगे तो अपन को भी भोगना पड़ेगा। पर बस मामला साफ हो गया, न सेठ जी को मूर्ति विसर्जित करने जाना पड़ा, न प्राण देना पड़े। भगवान की भक्ति का फल ऐसा है, लेकिन विश्वास हो तब ना। बहुत गहरा विश्वास चाहिए। मन डमाडोल होने, विचलित होने में देर नहीं लगती। कभी भी संसार में विपत्ति आने पर हम विचलित नहीं होते, संसार के लोग मदद नहीं करें तो। लेकिन भक्ति पाठ करते होंगे तो जरूर से कहेंगे कि क्या किया भगवान ने। भाई, हमारे अपने परिणामों से हमारे जीवन में बनता और बिगड़ता है। भगवान ना बनाते हैं ना बिगाड़ते हैं। हम तो उनकी भक्ति पूजा से स्वयं ही अपने जीवन को अच्छा बना लेते हैं। ऐसा अगर हम विचार करें और ऐसी ही अपने मन में भगवान की महिमा, भक्ति की महिमा ध्यान में रख कर के भक्ति करें, तो हमारी भक्ति भी हमारे जीवन को बहुत अच्छा बना सकती है। इसी भावना के साथ कि हम भक्ति का वास्तविक स्वरूप और उसकी महिमा समझकर अपना जीवन अच्छा